चलिए अब हाथ मुंह धो लीजिए, फिर खाना भी खाना है। आज सालों बाद हम अपनी अर्धांगिनी के संग बैठकर खाने का आनंद लेंगे। सुभाष जी ने माहौल को कुछ हल्का करना चाहा। उनकी बात सुनकर सावित्री जी हौले से मुस्कुरा दी। दोनों सुभाष जी के कमरे में आ गए। कुछ देर बाद सब डाइनिंग टेबल पर मौजूद थे। हालांकि आरवी जी हालत की वजह से खाना किसी के गले से नीचे नहीं उतर रहा था, पर जैसे तैसे सबने खुद को सामान्य दिखाते हुए थोड़ा खाना खाया, फिर अपने अपने रूम में चले आए। सावित्री जी भी सुभाष जी के साथ उनके रूम में चली आई। एक दूसरे की बाहों में समाए वो इतने सालों का सुख दुख एक दूसरे से बांट रहे थे। सुभाष जी उन्हें बता रहे थे कि उनके जाने के बाद क्या क्या हुआ। ऐसे ही बातें करते करते उनकी आंख लग गई। अगले दिन फिर सब हॉस्पिटल पहुंच गए। शान सारी रात वहीं बैठा था, पर सबके आते ही वहां से चला गया। आरवी को होश आने के बाद उसे पता चल चुकी थी, जिससे मन को कुछ सुकून जरूर मिला था, पर उसका सामना करने की हिम्मत नहीं हो रही थी। डॉक्टर ने आरवी को चेक किया, फिर बारी बारी सब उससे मिले, लेकिन किसी ने भी बच्चे का जिक्र नहीं किया उसके सामने, वरना उसकी तकलीफ और बढ़ जाती। आरवी भी खुद को सामान्य दिखाती रही। आरवी ने सबको वहां देखकर बेचैनी से अपनी निगाहें घुमाई, तो अर्पिता जी ने प्यार से उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा, क्या हुआ बेटा? बड़ी माँ, अंशु, आरवी की व्याकुल निगाहें उनकी तरफ घूम गई। उसकी चिंता समझते हुए उन्होंने मुस्कुराकर कहा, वो स्कूल गई है, दोपहर में आएंगी आपसे मिलने। आरवी ने अब सर हिला दिया। कुछ देर बाद उसको नाश्ता करवाया, फिर दवाई खिलाई, तो वो नींद की आगोश में चली गई। सब बाहर निकल गए, बस अनुपमा जी उसके पास रुक गई। दूसरी तरफ अमरजीत जी को भी होश आया। अर्जुन सारी रात यहीं था, तो सुभाष जी ने उसे आराम करने को घर भेज दिया। उसके जाने से पहले सृष्टि आई थी उससे और अमरजीत जी से मिलने। अर्जुन ने दोनों की पहचान करवाई। कुछ देर रुकने के बाद दोनों साथ ही हॉस्पिटल से निकले। अर्जुन के जाने के बाद सुभाष जी अमरजीत जी के कमरे में आए और उन्हें ध्यान से गले से लगा लिया। पुराने गिले शिकवे मिटाए गए। दोनों ने अपनी अपनी गलती की माफ़ी मांगी, फिर वापस पहले जैसे बातें करने लगे। आरवी के बारे में जानकर अमरजीत जी दुखी हो गए, तो सुभाष जी ने ही उन्हें संभाला और आश्वासन दिया कि अब से आरवी को उस घर में कोई दुख नहीं मिलेगा। काफी देर दोनों दोस्त साथ रहे। बारी बारी बाकी सब भी उनसे मिले, फिर उन्हें आराम करने को कहकर बाहर निकल गए। दोपहर तक अर्जुन वापस आ गया था और साथ में अंशु भी आई थी। अंशु तुरंत डैडी डैडी पुकारते हुए जाकर शान के पैरों से लिपट गई। शान ने उसको अपनी गोद में उठा लिया और प्यार से उसके गाल को चूमते हुए मुस्कुराकर बोला, आप यहाँ क्या कर रही हैं? अंशु मम्मा से मिलने आई है, दादी ने कहा कि मम्मा को चोट लगी है इसलिए वो अभी घर नहीं आएंगी, तो अंशु उनसे मिलने आ गई। अंशु ने तुरंत ही मुस्कुराकर जवाब दिया, फिर नाराजगी से मुंह फुलाते हुए बोली, अंशु डैडा से गुच्छा है, डैडा ने अंशु को नहीं बताया कि मम्मा को चोट लगी है। डैडा आपको परेशान नहीं करना चाहते थे बेटा, इसलिए नहीं बताया, और मम्मा को बस थोड़ी सी चोट लगी है, जल्दी ही वो घर आ जाएंगी, फिर अंशु मम्मा और डैडा साथ रहेंगे। शान ने प्यार से उसके गाल को सहलाया। उसकी बात सुनकर अंशु की नाराजगी खत्म हो गई और वो मुस्कुरा दी। शान ने उसके माथे को चूम लिया, फिर उसे नीचे उतारते हुए कहा, जाइए बेटा अपनी मम्मा से मिल लीजिए। अंशु ने तुरंत अपना छोटा सा सर हिलाया और अर्जुन की तरफ दौड़ गई, जो उनसे कुछ कदमों की दूरी पर खड़ा था। अर्जुन ने उसे अपनी गोद में उठा लिया और एक नज़र शान को देखने के बाद आरवी के वार्ड की तरफ बढ़ गया। आरवी आंखें बंद किए बेड पर लेटी हुई थी, तभी अचानक उसके वार्ड का दरवाजा खुला और अंशु की मीठी सी आवाज़ उसके कानों से टकराई, मम्मा। उसकी मीठी सी आवाज़ आरवी के कानों में मिश्री सी घुल गई। अब तक जो चेहरा उदास और मुरझाया हुआ था, उस पर उसका खोया नूर लौट आया और लबों पर मुस्कान ठहर गई। उसने सर घुमाकर देखा तो अर्जुन के गोद में चढ़ी अंशु अम्मा मम्मा करके उसको पुकार रही थी। उसका खिला हुआ प्यारा सा चेहरा देखकर आरवी की मुस्कान गहरी हो गई। अर्जुन ने अंशु को आरवी के पास बिठाया, फिर उसके बेड को सर की तरफ से हल्का ऊपर उठा दिया। आरवी ने अंशु को अपने सीने से लगा लिया। अंशु भी अपनी मम्मा से लिपट गई। कुछ देर बाद उसने सर उठाकर अपनी छोटी छोटी आंखों को टिमटिमाकर उसको देखते हुए कहा, मम्मा आपको चोट कैसे लगी? एक बैड अंकल मिल गए थे मम्मा को, उनके वजह से मम्मा गिर गई और उनको चोट लग गई। जैसे बेबी को लगी थी, अंशु ने गंभीरता से कहा और अपनी छोटी छोटी आंखों को टिमटिमाया। आरवी ने हामी भर दी तो उसने एकदम से अपने गालों को फुलाते हुए गुस्से से कहा, मम्मा बेबी उन बैड अंकल की पिट्टी कर देगी, फिर वो दोबारा मम्मा का हर्ट नहीं करेंगे। उसकी मासूमियत भरा गुस्सा देखकर अर्जुन ने हंसते हुए कहा, उसकी जरूरत नहीं प्रिंसेस, क्योंकि आपके डैडा ने उन बैड अंकल को पनिश कर दिया है, अब वो दोबारा कभी आपकी मम्मा को हर्ट नहीं करेंगे। अर्जुन की बात सुनकर आरवी की निगाहें उसकी तरफ उठ गईं। उसके सवाल को समझते हुए अर्जुन ने मुस्कुराकर अपनी पलकें झपका दी, फिर प्यार से उसके सर पर हाथ फेरते हुए बोला, तो ठीक तो है ना? आरवी ने फीकी मुस्कान लबों पर सजाते हुए हामी भर दी और अंशु के साथ बातें करने लगी। बाहर गेट पर खड़ा शान दोनों को देख रहा था। अंशु के आने पर आरवी के चेहरे का खोया नूर लौट आया था। सब आरवी के लिए शान की बेचैनी और तड़प महसूस कर रहे थे, पर कोई कुछ कह नहीं रहा था। कुछ देर बाद शान वहां से निकल गया और पुलिस स्टेशन पहुंच गया। सारा दिन यूं ही निकल गया। शाम को शान वापस आ गया था। छाया भी आई थी आरवी से मिलने, और आरवी के कहने पर अंशु को ना चाहते हुए भी उसके और बाकी सबके साथ घर जाना पड़ा। सुभाष जी ने शान को घर जाने को कहना चाहा, पर उसने साफ इनकार कर दिया। आज भी वो आरवी के साथ रुका और उसके सोने के बाद उसके वार्ड में जाकर उसका हाथ अपने गाल से लगाकर उसके बेड पर अपना सर रख दिया। दो दिन और एक रात बाद आज उसको नींद आई। जैसे ही आरवी को उसके नींद में होने का एहसास हुआ, उसने अपनी आंखें खोल दी। नम आंखों से शान को कुछ पल देखती रही, फिर अपना चेहरा फेर लिया। यूं ही दिन गुजरने लगे। हफ्ता भर बीत गया था। कार्तिक ने पुलिस को संभाल लिया था। शान ने अपने फोन में अश्विन जी का कन्फेशंस रिकॉर्ड किया था, जो उसने पुलिस को सौंप दिया। सारा आंखों देखा हाल कह सुनाया और उसकी और विहान की मौत को हादसा करार दिया गया। खुद को बचाते हुए उनसे वो दोनों मर गए। अब केस क्लोज हो चुका था। इन दिनों शान की किसी से बात नहीं हुई थी। वो अकेले ही रहता था। सारा दिन बाकी सब आरवी के पास रहते। लंच में अंशु भी आ जाती, शाम को सब वापस चले जाते, बस शान रुक जाता था। उसके साथ अर्जुन भी रुकता था, पर दोनों की बात नहीं होती थी। शान एक बार भी आरवी के सामने नहीं गया था। रात को उसके सोने के बाद उसके पास जाता, कुछ पल खामोशी से उसको देखता रहा, फिर उसका हाथ थामकर सो जाता। ये कहना झूठ होगा कि उस वक्त आरवी नींद में होती थी, क्योंकि शान के स्पर्श से ही उसकी नींद खुल जाती थी, पर वो ऐसा ही दिखाती जैसे सच में सो रही है। सृष्टि रोज सुबह हॉस्पिटल आती थी, दोनों से मिलती। अमरजीत जी से तो उसको काफी पटने भी लगी थी। अर्जुन सारी रात वहां रुकता और सुबह वापस जाता, फिर दोपहर में अंशु और छाया को लेकर वापस आ जाता। एक हफ्ता बीत गया था। अमरजीत जी और आरवी की हालत अब काफी सुधर गई थी और उन दोनों को आज डिस्चार्ज मिलने वाला था। आज हॉस्पिटल में बस अर्जुन, शान और अर्पिता जी ही थे, बाकी सब घर पर थे। डिस्चार्ज की फॉर्मेलिटी पूरी करके शान फाइनली आज आरवी के वार्ड में गया उससे बात करने। आरवी आंखें बंद किए बेड पर लेटी हुई थी। मन में बहुत कुछ चल रहा था उसके, जिसे सभी अनजान थे।
ये बात वो भी नोटिस कर रही थी कि शान उसके जागते हुए उसके सामने नहीं आता, शायद उसको फेस करने से बच रहा है, और जब भी आता है रात को उसके सोने के बाद ही आता है। पर उसने कुछ नहीं कहा, कुछ खास रिएक्ट भी नहीं किया, ना किसी से शान के बारे में कुछ सवाल किया, और ना ही शान को भी कभी एहसास होने दिया कि रात को वो जाग रही होती है। बस आंखें बंद किए लेटे उसको महसूस करती रहती थी, और ऐसे ही दोनों नींद की आगोश में चले जाते थे। अब भी वो अपने ही ख्यालों में गुम थी जब उसके कानों में दरवाजे के खुलने की आवाज़ पड़ी। इसके साथ ही आरवी ने अपनी आंखें खोल दी और सर दरवाजे की तरफ घुमा ली। गेट पर खड़े शान से उसकी नज़रें एक पल को उलझी जरूर, पर अगले ही पल उसने अपना चेहरा दूसरी तरफ फेर लिया। शान ने गहरी सांस छोड़ी और दरवाज़ा बंद करके उसके पास चला आया। वो आरवी के बेड से एक कदम की दूरी पर ही रुक गया। आरवी, शान ने उसे पुकारा, पर आरवी ने उसकी बात सुनी ही नहीं, तो शान ने फिर से उसे पुकारा। आरवी, किसे बुला रहे हैं आप? आरवी ने उसकी तरफ पलटते हुए भौंच काकर उसे देखा। उसका सवाल सुनकर एक पल को शान हैरान रह गया, फिर आराम से बोला, तुम्हें? ओ, पर मैं तो आरवी नहीं। एक बार शान चौंक गया और असमंजस भरी निगाहों से उसे देखने लगा, जबकि आरवी नेहद गंभीर लग रही थी। उसने अपनी बात आगे कहना जारी रखा, आप इतनी जल्दी भूल गए? आपने ही तो मुझे मेरी असली पहचान बताई थी। आद्या, आद्या ठाकुर, उसी अमरजीत ठाकुर की बेटी जिन्होंने आपके डैड को धोखा दिया, आपकी माँ को आपसे दूर कर दिया, आपके डैड का एक्सीडेंट तक करवा दिया, आपसे आपका बचपन, आपकी खुशियाँ छीन ली जिनसे आप नफ़रत करते हैं, और क्योंकि मेरी रगों में भी उन्हीं का खून बहता है, इसलिए आपको मुझसे भी नफ़रत है, बेइंतहा नफ़रत, और वही नफ़रत तो आप पिछले इतने महीनों से निभाते आ रहे हैं। मेरे पिता ने आपको दर्द दिया, आपके परिवार को तकलीफ़ पहुँचाई, तो उनका बदला आप मुझे तकलीफ़ देकर ले रहे थे। उन्होंने आपसे आपकी माँ को दूर किया, तो आपने उनसे उनकी बेटी को दूर रखा, तड़पाया उन्हें, जलील किया उनकी बेटी को ताकि उन्हें दर्द हो। पर शायद तब आप ये भूल गए कि मैं उनकी बेटी के साथ साथ आपकी पत्नी भी थी और सबसे पहले एक इंसान थी, पर आपने मुझे बस अपने बदला लेने का एक जरिया बना दिया। आज आपको आरवी याद आ रही है, तब कहाँ थे आप? जब यही आरवी आपके प्यार के लिए तड़प रही थी, तब तो आपको मैं नज़र ही नहीं आ रही थी, और कुछ था जो आपको दिख रहा था, तो वो था मेरा अमरजीत ठाकुर से रिश्ता और आपकी नफ़रत। टू बी कंटिन्यूड।